अध्याय 26 अधर्म के धन से मित्र। यह अध्याय लूका 16 आयत 1 से 9 पर आधारित है। मसीह का आगमन गहन सांसारिकता के समय हुआ। पुरुष शाश्वत को लौकिक वर्तमान के मामलों के लिए भविष्य के दावों के अधीन कर रहे थे। वे प्रेम के लिए वास्तविकताओं के लिए प्रेत हैं। वे विश्वास के द्वारा अनदेखी और बड़े नहीं थे। शैतान ने उनके सामने इस जीवन की बातों का आकर्षक और सभी अवशोषित के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने प्रलोभनों को ध्यान में रखा। मसीह इस आदेश को बदलने के लिए आया था। उन्होंने हिचखोले खाकर उन लोगों को मंत्रमुग्ध करने की जो बेखौफ उसे तोड़ा। अपने शिक्षण में उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के दावों को समायोजित करने की मांग की ताकि पुरुषों के विचारों को वर्तमान से भविष्य में बदल सके। समय की चीजों के अपने पीछे से उन्होंने उन्हें अनंत काल के लिए प्रावधान करने के लिए बुलाया। वहां एक आदमी था, उन्होंने कहा, जिसका एक भंडारी था, उसी पर आरोप लगाया कि उसने अपना माल बर्बाद कर दिया। अमीर आदमी ने इस नौकर के हाथों में अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी, लेकिन नौकर बेवफा था और गुरु को यकीन था कि उसे व्यवस्थित रूप से लूटा जा रहा है। उन्होंने उसे अब अपनी सेवाएं न बनाए रखने का दृढ़ निश्चय किया और उन्होंने अपने खेतों की जांच के लिए बुलाया। यह कैसे है, उन्होंने कहा, कि मैं तुम्हारी यह बात सुनता हूं? अपने भंडारीपन का हिसाब दो, क्योंकि हो सकता है कि तुम अब और भंडारी न रहोगे। उसके सामने निर्वहन की संभावना के साथ भंडारी ने अपनी पसंद के लिए तीन रास्ते खोले। उसे श्रम, भीख या भूखा रहना पड़ेगा। उसने खुद से कहा, मैं क्या करूंगा? मेरे ईश्वर मुझसे भंडारीपन ले लेगा। मैं खुदाई नहीं कर सकता। भीख मांगने के लिए मैं शर्मिंदा हूं। मुझे क्या करना जब मुझे भंडारीपन से निकाल दिया जाएगा? हो सकता है वो मुझे अपने घंटों काम करने के लिए ग्रहण करे। इसलिए उसने अपने प्रभु के एक कर्जदार को अपने पास बुला लिया। पहले से कहा, तुझ पर प्रभु कितना कर्जा है? उसने कहा, तेल के 100 उपाय। उसने उससे कहा, यह खाता लो और इसमें 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे कहा कि तेरा कितना कर्जा है? उसने कहा कि गेहूं के 100 उपाय। उसने उससे कहा, ये खाता लेकर इसमें 80 लिख दे। इस बेवफा सेवक ने अपनी बेईमानी में दूसरों को भी साझेदार बना दिया। उसने उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए अपने गुरु को धोखा दिया और अपने लाभ के लिए खुद को अपने घरों में एक दोस्त के रूप में प्राप्त करने के लिए दायित्व के तहत रखा। और प्रभु ने अन्यायपूर्ण भंडारी की प्रशंसा, क्योंकि उन्होंने बुद्धिमानी से काम किया था। सांसारिक व्यक्ति ने उस आदमी की तीखेपन की प्रशंसा की जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन अमीर आदमी की प्रशंसा ईश्वर की प्रशंसा नहीं थी। मसीह ने अन्यायपूर्ण भंडारी की प्रशंसा नहीं की, लेकिन उसने जो सबक सिखाने की इच्छा की उसे स्पष्ट करने के लिए एक सुविख्यात घटना का उपयोग किया। अपने आप को दोस्तों को धन दौलत के अधर्म बनाओ, उन्होंने कहा, जब ये विफल हो जाएंगे तो वे आपको अनंत सारणी में प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक और पापियों के साथ घुलने मिलने के लिए फरीसियों द्वारा उद्धारकर्ता को रोकने की कोशिश गई, लेकिन उनके प्रति उनकी दिलचस्पी कम नहीं हुई और न ही उनके लिए उनके प्रयास बंद हुए। उन्होंने कहा कि उनका रोजगार उन्हें प्रलोभन में लाता है। वे बुराई के मोह से घिरे हुए थे। पहला गलत कदम आसान था और वंश तेजी से अधिक बेईमानी और बढ़ते अपराधों के लिए था। यीशु हर माध्यम से उन्हें उच्च उद्देश्यों और कुलीन सिद्धांतों के लिए जीतना चाहते थे। यह उद्देश्य उनके मन में था। वहां लोगों के बीच बस एक ऐसा मामला था जो दृष्टांत ने दर्शाया गया था, और मसीह के वर्णन में उन्होंने अपने स्वयं के अभ्यासों को मान्यता दी थी। उनका ध्यान आकर्षित किया गया था और अपने स्वयं के बेईमान व्यवहार की तस्वीर से उनमें से कई ने आघात आध्यात्मिक सच्चाई का सबक सीखा। हालांकि दृष्टांत में वह सीधे चेलों से बात करता था, उनके लिए सबसे पहले सट्ट का रिसवा हुआ और उनके माध्यम से दूसरों तक पहुंचना था। मसीह के शिष्यों का अधिकांश शिक्षण पहली बार में समझ नहीं आया था और अक्सर उनके पाठ लगभग भूल गए लगते थे, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रभाव के बाद में सत्य अलग होने के पूर्ण जीवित हो गए और शिष्यों के माध्यम से वे नए स्थानांतरित होने से पहले पूर्ण रूप से कलीसिया में जुड़ गए और उद्धारकर्ता फरीसियों से भी बात कर रहा था। उन्होंने इस आशा को त्याग नहीं दिया कि वे उनके बल का अनुभव करेंगे। बहुतों को गहरा दोषी ठहराया गया था और जैसे कि वो पवित्र आत्मा की आज्ञा तहत सच्चाई सुनते हैं, कुछ मसीह में विश्वासी नहीं बोलेंगे। फरीसियों ने उसे प्रचारकों और पापियों के साथ मिलन का आरोप लगाकर मसीह को तिरस्कार में करने की कोशिश की थी। अब वह इन आरोपों पर पलटवार करता है। सार्वजनिक रूप से उनके द्वारा किए जाने वाले दृश्य को उन फरीसियों के समक्ष रखा गया है। दोनों को अपनी कार्यवाही के पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने के रूप में एकमात्र तरीका दिखाते हैं और जिसमें वे अपनी त्रुटियों को भुनाते हैं। बेईमान भंडारी को उनके ईश्वर के समान परोपकारी उद्देश्यों के लिए सौंपा गया था, लेकिन उसने उन्हें अपने लिए इस्तेमाल किया था। तो इज़राइल के साथ ईश्वर ने इब्राहिम का बीज चुना। एक भुजा के साथ उन्होंने मिस्र में बंधन से छुड़ाया था। उसने उन्हें दुनिया के आशीर्वाद के लिए पवित्र सत्य का निक्षेपागार बना दिया था। उसने उन्हें जीवित परमेश्वर के वचन को सौंपा था कि वे दूसरों को प्रकाश संचार कर सकते हैं, लेकिन उनके भंडारी ने इन उपहारों का उपयोग खुद को समृद्ध और उत्कृष्ट बनाने के लिए किया था। आत्म महत्व और आत्मधार्मिकता से भरे फरीसी अपनी महिमा का उपयोग करने के लिए ईश्वर द्वारा उधार दिए गए सामान का दुरुपयोग कर रहे थे। दृष्टांत में नौकर ने भविष्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था, अपने द्वारा उपयोग के बारे में सोचा था। जब उससे भंडारीपन लिया जाएगा तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन उसके मालिक का माल अभी भी उसके हाथों में था और उसने उन्हें इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित किया ताकि भविष्य के खिलाफ खुद को सुरक्षित कर सके। इसे पूरा करने के लिए उसे एक नई योजना पर काम किया। खुद को पाने के लिए उसे दूसरों को संस्कारित करना चाहिए। इस प्रकार वह दोस्तों को सुरक्षित कर सकता है जिन्हें जब उसे बाहर निकाला जाए तो वह उसे प्राप्त करेगा। ऐसा फरीसियों के साथ भी था। उनसे लेने के लिए नेतृत्व और भविष्य के लिए प्रदान करने के लिए कहा जाता है। केवल दूसरों की भलाई चाहने से वे खुद को लाभान्वित कर सकते थे। वर्तमान जीवन काल में केवल ईश्वर के उपहार प्रदान करने से वे अनंत काल के लिए प्रदान कर सकते हैं। दृष्टांत से संबंधित होने के पश्चात मसीह ने कहा, इस जगत के बच्चे प्रकाश के बच्चों की तुलना में अपनी पीढ़ी के समझदार है। यह सांसारिक समझदार पुरुष स्वयं की सेवा में ईश्वर की सेवा करने वाले बच्चों की तुलना में स्वयं की सेवा करने में अधिक ज्ञान और ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं।
तो ये मसीह के दिन में था, तो अब ये है। कई लोगों के जीवन को देखो जो मसीही होने का दावा करते हैं। प्रभु ने उन्हें क्षमताओं और शक्ति और प्रभाव के साथ संपन्न किया है। उसने उन्हें पैसे सौंपे हैं कि वे बड़े उद्धार में उनके सहचालक संचालक हो सकते हैं। उनके सभी उपहारों का उपयोग मानवता को आशीर्वाद देने में किया जाता है, दुख और जरूरतमंदों को राहत देने में। हम भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं, नग्न को कपड़े उढ़ाना चाहते हैं, विधवा को और पितृहीन की देखभाल करना चाहते हैं, व्यथित और दलितों की सेवकाई करना चाहते हैं। ईश्वर का मतलब कभी नहीं था कि दुनिया में व्यापक दुख मौजूद होना चाहिए। उनका कभी ये मतलब नहीं था कि एक आदमी के पास जीवन की विलासिता को बहुतायत होनी चाहिए, जबकि दूसरों के बच्चे रोटी के लिए रोते हैं। जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं के ऊपर के साधन मनुष्य को अच्छाई करने, मानवता को आशीर्वाद देने के लिए सौंपे जाते हैं। प्रभु कहता है, जो तुझे है बेच दे और दान कर दो। लूका 12 आयत 33। वितरित करने के लिए तैयार रहें, संवाद करने के लिए तैयार रहें। पहला तिमुथियुस 6 आयत 18। जब तुम एक दावत बनाते हो तो उन्हें कपड़े से ढक दो। पीड़ित आत्मा को संतुष्ट करें। यशाया 58 आयत 6-7-10। तुम सब संसार में जाओ और प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। मरकुस 16 आयत 15। ये प्रभु के आदेश है।
क्या ये काम करने वाले मसीहों के महान शरीर हैं? काश कितने खुद को ईश्वर के उपहार के लिए तैयार कर सकते, कितने घर घर जोड़ रहे हैं और जमीन से जमीन तक, कितने लोग आनंद के लिए अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, भूखे के संतुष्टि के लिए, असाधारण घरों, फर्नीचर और पोशाक के लिए, उनके साथ ही बीमारी और मौत के लिए दुख और अपराध के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक दयालु रूप, एक शब्द या सहानुभूति के विलेख के बिना बहुरूपताएं खत्म हो रही है। पुरुष ईश्वर के प्रति लूट का दोषी है। साधनों का उनका स्वार्थी उपयोग उस महिमा के ईश्वर को लूटता है जिसे पीड़ित मानवता आत्माओं को उद्धार की राहत में उसे वापस परिलक्षित किया जाना चाहिए। वे उसके सौंपे गए सामान का गबन कर रहे हैं। प्रभु घोषणा करता है, मैं तुम्हारे न्याय करने के लिए निकट आता हूं और मैं उसके खिलाफ एक तेज गवाह बन जाता हूं, जो अपने वेतन विधवा और पिता विहीन लोगों के किराए पर रखने पर अत्याचार करते हैं और वह अजनबी को अपने अधिकार से अलग कर देता है। क्या एक आदमी ईश्वर की लूट लेता है? फिर मुझे लूट लिया है। परंतु तुम कहते हो कि हमने तुम्हें कहां से लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। मलाकी 3:5-9। हे धनवानों सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोओगे। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में कोई लग गई है और वह कोई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहें और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। याकूब 5:13-54। सभी को अपने सौंपे गए उपहारों को प्रदान करना आवश्यक होगा। अंतिम निर्णय के दिन में पुरुषों की जमा की गई संपत्ति उनके लिए बेकार हो जाएगी। उनके पास कुछ भी नहीं है जिसे वे अपना कह सकते हैं। जो लोग शब्दमयी रखने में अपना जीवन बिताते हैं, वे अपने शाश्वत सहयोग के लिए कम बुद्ध, कम विचार और अपनी शाश्वत भलाई की परवाह करते हैं। अपनी पीढ़ी में इस दुनिया के बच्चे की तुलना में कम समझदार ये प्रकाश के पेशेवर बच्चे हैं। ये वह हैं जिनमें से भविष्यवक्ता ने महान निर्णय दिवस की अपनी दृष्टि में घोषित किया। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। यशाया 2:20-21। धन दौलत के अधर्मियों को दोस्त बनाए, मसीह कहते हैं। जब ये विफल हो जाएगा तो वे आपको अनंत झांकी में प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर, मसीह और स्वर्गदूत सभी पीड़ितों और पीड़ा के प्रति मंत्रणा कर रहे हैं। पापी अपने आप को इस काम के लिए ईश्वर को देता है। इस उद्देश्य के लिए उसके उपहार का उपयोग करें और आप स्वर्गीय प्राणियों के साथ साझेदारी में प्रवेश करें। आपका दिल उनके साथ सहानुभूति में धड़कता है। आपके चरित्र में उनके लिए आत्मसात किया जाएगा। अनंत झांकी अजनबियों की नहीं होगी। जब सांसारिक चीजें समाप्त हो जाएगी, स्वर्ग के द्वार पर पहरेदार आपका स्वागत करेंगे और दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए उपयोग किया जाने वाला साधन रिटर्न लाएंगे। सही ढंग से नियोजित धन बहुत अच्छा पूरा करेगा। मसीह पर आत्माओं को जीता जाएगा। वो जो मसीह के जीवन की योजना अनुसरण करता है, वो ईश्वर के दरबार में उन लोगों को देखेगा जिनके लिए उसने धरती पर श्रम और बलिदान किया है। कृतज्ञता से उन लोगों को याद किया जाएगा जो उनके उद्धार में सहायक रहे हैं। पृथ्वी को बचाने के काम में वफादार रहे लोगों के लिए कीमती स्वर्ग बनाओ। इस दृष्टांत का पाठ सभी के लिए है। मसीह के द्वारा दी गई कृपा के लिए सभी को जिम्मेदार ठहरा जाएगा। लौकिक या सांसारिक मामलों में लीन होने के लिए जीवन बहुत गंभीर है। प्रभु की इच्छा है कि हम दूसरों से संवाद करें, जो कि अनंत और अनदेखे हमसे संवाद करते हैं। हर साल लाखों मानव आत्माएं अनंत काल तक बिना चेतावनी और बगैर बचाए रहे हैं। हमारे विविध जीवन के अवसरों घंटे घंटे से आत्मा तक पहुंचाने और बचाने के अवसर हमारे लिए खुले हैं। ये अवसर लगातार आते और जाते रहते हैं। परमेश्वर हमें उनमें से सबसे ज्यादा बनाने की इच्छा रखता है। दिन, सप्ताह और महीने गुजर रहे हैं। हमारे पास एक दिन, एक महीना कम है जिसमें हमें अपना काम करना है। सबसे लंबे समय तक कुछ साल और आवाज, जिसे हम जवाब देने से इनकार नहीं कर सकते हैं, ये कहते हुए सुना जाएगा, अपने भंडारीपन का हिसाब दो। मसीह हरेक पर विचार करने के लिए कहता है, एक ईमानदार गणना करें, एक पैमाने पर रखो। यीशु, जिसका अर्थ है अनंत खजाना, जीवन सत्य, स्वर्ग और आत्माओं में मसीह का आनंद, दुनिया की पेशकश कर सकते हैं, हर आकर्षण में डाल दिया। एक पैमाने में अपनी आत्मा की हानि और उन लोगों की आत्माएं जिन्हें आप बचाने में सहायक रहे हैं, दूसरे में अपने लिए और उनके लिए, एक जीवन जो ईश्वर के जीवन के साथ मापता है। समय के लिए और अनंत काल के लिए तौलना। जब आप इस प्रकार लगे हुए होते हैं तो मसीह बोलता है, इससे मनुष्य का क्या लाभ होगा? यदि प्रकार लगे हुए होते हैं तो मसीह बोलता है, इससे मनुष्य को क्या लाभ होगा यदि वो पूरी दुनिया को प्राप्त करेगा और अपनी आत्मा को खो देगा? मरकुस 8:36। ईश्वर हमें सांसारिक स्थान पर स्वर्गीय रूप से चुनने की इच्छा रखते हैं। वो हमारे सामने एक एक स्वर्गीय निवेश की प्रतिज्ञाएं खोलता है। वो हमारी पसंद को सबसे सुरक्षित उद्देश्य, हमारी पसंद के खजाने को सुरक्षा प्रदान करेगा। वो घोषणा करता है, मैं आदमी को बढ़िया सोने से ज्यादा कीमती बनाऊंगा, यहां तक कि औकार के सुनहरे किनारे से भी बड़ा आदमी। यशाया 1:1। जब धन का नाश कीड़े करते हैं और जंग के गलियारे बहने लगते हैं, तो मसीह के अनुयायी अपने स्वर्गीय खजाने में आनंदित हो सकते हैं, जो धन असंगत है। दुनिया की सभी दोस्ती से बेहतर है मसीह की छुड़ाई हुई दोस्ती। पृथ्वी पर रईसों के महल की उपाधि से बेहतर है कि हमारे प्रभु जिस भवन को तैयार करने के लिए गए हैं, वे वहां पर है। और सांसारिक प्रशंसा के सभी शब्दों से बेहतर उनके वफादार सेवकों को उद्धारकर्ता के शब्द होंगे। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगो, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाऊं जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। मत्ती 25:34।
उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने माल को खत्म कर दिया है, मसीह अभी भी स्थायी धन को सुरक्षित करने का अवसर देता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं खराब करता। लूका 6:38-12:33।
इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले कि सत्य जीवन को वश में कर ले। 1 तिमुथियुस 6:7-9। फिर अपनी संपत्ति को पहले से स्वर्ग में जाने दे, ईश्वर के सिंहासन के बगल में अपने खजाने को रखे। सुनिश्चित करें कि आपका नाम मसीह के बेशुमार धन के लिए है। अपने आप को अनीति के धन दौलत के माध्यम से दोस्त बनाएं, कि जब ये विफल हो जाएगा तो वे आपको अनंत मंदिर में प्राप्त कर सकते हैं।